सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनम्।
द्रव्य क्षेत्र काल भव आदि निमित्तवशात कर्मनन फल प्राप्ति हृदय, ये सिद्धांत के वचन हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव इन सब के निमित्त को लेकर के मुख्य गौणता की बात अलग होती है बेटा, और वह उसका परिणाम रहता कर्म इस ढंग से फलते हैं। संस्कारित तो था ही, पिताजी के प्रत्येक शब्द को सुनने का आदि तो था ही, अभ्यास तो था ही। क्या कर रहे हैं पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? हां ठीक कह रहा हूं बेटा, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं। फिर दोष किसका है ये बताओ, आपको तो तकलीफ हो गई, यदि मेरा दोष नहीं तो दोष इसमें किसका है ये बताना पड़ेगा आपको। मुझे यह रहस्य अभी तक रहस्यमय रह गया, आप बता दीजिए। मैंने तो बहुत महान अनर्थ कर लिया। नहीं किया बेटा, तुम्हारा इसमें कोई भी हाथ नहीं। मैंने अपने मुख से बोला और मेरे मन से विचार करके बोला, सारी गालियां समाप्त हो गई। और अपने माता पिताओं के लिए इस प्रकार के भूलने वाला कि क्षमा का पात्र नहीं हो सकता। हाँ बेटा तुमने नहीं बोला, मैं ठीक कह रहा हूं। तो किसने बोला और क्यों बोला ये बता दो। ये बताया ना अभी, द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से ही कर्म फल दिया करते हैं। वह क्षेत्र ही ऐसा था, वह स्थान ही ऐसा था, वह जमीन ही ऐसी थी, जहां पर कोई भी बैठेगा तो ऐसा ही कहेगा। क्या कह रहे हैं आप? एक छात्र ने कहा था अभी, आयतन की बात, जहां पर एत्य शरणम एत्य लीनम यान्ति, जहां पर जा करके अपने आप को लीन कर देता है, अपने आप को प्रवीण कर देता है, अपने आप को वह साश्रय मानने लगने लगता है, अपने आप को धन्य मानने लग जाता है, उसका नाम आयतन बोलते हैं। वह स्थान ही ऐसा था। क्या था वो स्थान ये बताओ। उस स्थान में इस स्थान में कोई अंतर नहीं, वह उस नदी का किनारा और यह इस नदी का किनारा, बीच में नदी बह रही है और नदी को तो हम वैसे ही पवित्र मानते हैं। उस नदी प्रति वर्ष एक बार ऐसी बाढ़ में आकर के पूरा का पूरा तट इधर का और उधर का मैलों तक साफ कर देते, और वह नदी के दोनों किनारे हैं। उस किनारे की आप प्रशंसा नहीं कर रही, इस किनारे की प्रशंसा कर रहे, आखिर क्या हो गया बताओ बेटा? बरसों की बात है, बरसों की, इस वर्ष की नहीं, बरसों की बात है। यह वही स्थान था जिस स्थान पर एक पुत्र ने अपनी मां के ऊपर गर्दन के ऊपर कुल्हाड़ा मारा था। अब उसका नाम अंत में राम है और पहले परशु है। परशु राम, राम का आप नाम लेते हैं परशुराम का कोई भी नाम नहीं लेता। परशु का अर्थ क्या वो था? फरसा जिसको बोलते हैं आजकल। जो परशुराम की यदि चित्र आपने देखा होगा तो वह परशुराम के यही एकमात्र फरसा अपने कंधों के ऊपर रखा है और अपनी मां के ऊपर गर्दन के ऊपर एक घाव दो टुकड़े किए थे जिन्होंने जन्म लिया था उसी की गर्दन के ऊपर टुकड़े किए थे अपने फरसा के माध्यम से। उसका संस्कार बेटा अभी भी उस धरती पर विद्यमान है। कई बार बाढ़ आ गई है लेकिन वह स्थान अभी भी संस्कार को नहीं छोड़ पा रहा है, इसलिए उस स्थान से हटा करके इस स्थान पर ले आने के लिए हमने कहा अपने आप ही मस्तिष्क ठीक हो जाएगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर जाने के उपरांत मान कषाय उद्भूत हो जाती हैं, जिस स्थान पर जाने के उपरांत क्रोध अपने आप ही उबलने लग जाता है, कुछ स्थान पर जाने के उपरांत मायाचारी के भाव अपने आप आने लग जाता, कुछ स्थान को देखने से लोभ इतना बढ़ने लग जाता है और वह शौच धर्म के ऊपर भी वह लोभ करने लग जाता, भूल जाता है पैसे पैसे की ओर चला जाता है और अनेक प्रकार के भूख उसकी खुल जाती हैं। ये कुछ स्थान के, कुछ द्रव्य के, कुछ क्षेत्र के, कुछ काल के और कुछ सहपाठी सहवासियों के साथ जुड़ने से हुआ करता है। सब कुछ हो जाए लेकिन क्षेत्र और अपने द्रव्य ये ऐसी रखें जिसके द्वारा हमारे परिणामों की परंपरा में किसी प्रकार का अंतर ना आए। सच्चे देव गुरु शास्त्र के श्रद्धान को कायम रखने के लिए उसी प्रकार के व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए, उसी व्यक्तियों के पालन पोषण के लिए और सहयोग के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए, उन्हीं स्थानों का निरीक्षण और परीक्षण करते हुए उसी में अपना आवास बना लेना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे संस्कार दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती चली जाए, यह भाव हमेशा रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें यह सात्विकता पलती रहती है। जब ये बातें सुन लेता है वह परशुराम, वह श्रवण कुमार, ये ऐसी बात है तो आखिर मां के गर्दन के ऊपर उसने क्यों ऐसा कुल्हाड़ी मार दी, ऐसा ऐसे इतिहास में नहीं सुना बेटा। यह भी एक अलग बात है, क्या कि मां की गर्दन के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के लिए उनके पिताजी ने आज्ञा दी थी। ये क्या बात सुन रहे हैं, पिताजी की आज्ञा मां के ऊपर और बेटा कुल्हाड़ी मारे? हां बेटा, तो पिताजी की आज्ञा मानना चाहिए कि ना? आप पिताजी की आज्ञा तो मानना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आज्ञा इस प्रकार तो मानना ठीक नहीं लगता, इसलिए तो गड़बड़ होता है। यह पिताजी ने यदि अपनी मां के ऊपर परसु कुल्हाड़ी मारने के लिए कहा है तो कुछ सोच करके कहा होगा, क्या सोच करे? वह अपवाद से बचाने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए किया था और यह बेटे के अंदर कितने पिताजी की आज्ञा के पालन करने के भाव है। देखो, एक तो बेटा वह भी है जो राम है, दशरथ की आज्ञा मान करके वह वनवास चला गया। वनवास चला जाता तो बहुत अच्छा था परशुराम, लेकिन लेकिन क्यों कहते हो? पिता की आज्ञा है तो पिता की आज्ञा में महत्व रहता है, ये ध्यान रखो। उन्हें मारने के लिए, मारने के लिए नहीं, वह उस कुल्हाड़ी के माध्यम से गर्दन तो ठीक हो जाएगी। बेटा अब क्या मांगता मांग ले, तुमने मेरे आज्ञा का पालन किया, अब क्या मांग, और क्या मांगना है, बस पति पत्नी की अपने मां की गर्दन अपने धड़ से जुड़ जा, और कुछ नहीं चाहते था, बस जुड़ जगाया। ये सब क्या है हमें समझ में नहीं आता, ऐसा हुआ या नहीं हुआ या मैं नहीं चाहता, लेकिन कुछ शब्दों में बात ऐसी रहस्य छुपी हुई रहती है। इससे हमें ज्ञात हो जाता है कि आगे का जीवन किस ढंग से बनने वाला है। आप लोग जिस क्षेत्र पर आए, जिस क्षेत्र पर वीतरागता का वातावरण है, यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। कल व्यवस्था की बात चल रही थी, आज क्षमा का दिन है, सुन रहे हैं क्या? नहीं, सभी लोग सुन रहे हैं क्या? नहीं, व्यवस्थापक और व्यवस्थित व्यक्ति सारे सारे सुनना चाहिए। कुछ व्यवस्थापक लोग सुनना नहीं चाहते, उनको भी सुनना चाहिए। वस्तुतः लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमें अपना कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य होता है। आप सोचो, विचार करो, जिस धरती पर जिस बच्चे ने, अपने पुत्र ने मां के ऊपर कुल्हाड़ मार दिया, उसका संस्कार बरसों के बाद भी नहीं चला जाता, और आज पशु उनके ऊपर ऐसी कुठारा गात खात किया जा रहा है, उस धरती के ऊपर क्या दशा हो गई होगी, आपको सोचना चाहिए। ऐसे वह पशुओं के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा, सुनियोजित वह दृश्य देखना पड़े, इसलिए वह यांत्रिक ऐसे कत्लखाने खोले जा रहे हैं जहां पर हजारों हजारों एक साथ गाय भैंस बड़े बड़े पशुओं को भेज दिया जाता है। पता नहीं वो कहां चले जाते हैं, केवल डिब्बे में वह मांस पैक होकर के, और आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, और पैकिंग होकर के और प्लेन के माध्यम से उड़ करके विदेश में जाकर के उतर जाता है, और वो हंसते हुए मुस्कान के साथ उसका सेवन करते हैं। ये कौन सा घृणास्पद कार्य हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। इस धरती पर यह हो रहा, ये संस्कार कब तक रहेंगे, इसके बारे में मैं रात दिन सोचता रहता हूं। ये अनर्थ इसलिए कि जिसके माध्यम से आपका जीवन चल रहा है, और उसके ऊपर आप कितनी संख्या में, आप करोड़ों की बात, कई व्यक्ति कहते हैं महाराज मनुष्य कि आबादी बढ़ती चली गई है, तो राष्ट्र के सामने समस्या आ गई, इसलिए परिवार नियोजन करना अनिवार्य हो गया, और इनके लिए अन्न की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, सरकार कहती है, इसलिए यदि समस्या जानवरों की तरफ से आ जाए तो इनके लिए हम क्या करेंगे। उन लोगों को केवल इतिहास पढ़ना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए। मैं उनको बाध्य तो नहीं कर सकता। जिस समय स्वतंत्रता मिली थी, उस समय गांधी जी ने यह कहा था, ये ध्यान रखो, पशुओं के माध्यम से ही भारत की रक्षा होने वाली है, होगी। क्योंकि ये वो पशु हैं, वन्य पशु नहीं, ये वो पशु हैं जिसके माध्यम से उनका संरक्षण होता है, तो यह मनुष्य का भी संरक्षण होता है, उसके बिना संभव नहीं। एक अभी अभी लेख किसी के मुख से हमने सुना, कहां तक उनके मुख से सुना है, इसलिए जो का तो मैं कह रहा हूं कि रूस ने, या रूस के पास और कहीं जो अभी, हाँ रूस, हाँ वहीं पर अड़ोस पड़ोस में कोई देश हो सकता, वहां पर युद्ध के दौरान सारे सारे पशुओं का संहार हो गया, सारे सगे बम्बार्डमेंट हो गया, पशुओं का संहार हो गया, तो उस देश को आबाद करने के लिए सर्वप्रथम अभी पुनः संस्कारित करने के लिए पशुओं को बसा रहे हैं, और यह भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो यहां से पशुओं को उठा रहा है। ये सुन करके हमें आश्चर्य होता है कि क्या बात हो रही है, कुछ समझ में नहीं। उन्होंने हेतु ये दिया कि यहां के लोग तभी सर्दी गर्मी को सहन करने की क्षमता ला सकते हैं क्योंकि पशुओं के दूध के बिना वो सर्दी और गर्मी सहन नहीं कर पाती। उन्होंने हेतु दिया, कहां तक उपयुक्त मैं ये नहीं जानता, किंतु जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय पशुओं की संख्या सुनते हैं 25 करोड़ से भी ज्यादा थी और मनुष्यों की संख्या उस समय आबाद वृद्ध सबको लेकर के 35 करोड़ की आबाद थी। 35 करोड़ की आबादी के द्वारा 25 करोड़ पशुओं का संरक्षण हो सकता है तो आज मनुष्य की संख्या 1 अरब को छू रही है, तो कम से कम 80 करोड़ तक पशुओं का संरक्षण करने के, चूंकि आज विकास और हो गया, विकासशील राष्ट्र माना लेगा, इसलिए और भी यदि ज्यादा पशु हो जाते हैं तो बात और कुछ नहीं, लेकिन आज पशु है ही कितने, तो 25 से भी नीचे की संख्या आज हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। और फिर भी यह जमा खर्च लगाया जा रहा है कि यदि पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो भारत का क्या होगा, ये ध्यान रखना। ये भारत है और यह कहा जाता है जो बच्चा जन्म लेता है वो सर्वप्रथम माता पिताओं के ऊपर भार नहीं डालता, वो स्वयं अपने पास दूध लेकर के आता है। क्यों जो ही जन्म लेता है त्यों ही मां जो है दूध उसे पिलाने लग जाते हैं, उससे पहले उसके पास दूध नहीं रहता। ये दुधारू गाय जो है वह बछड़ों के लिए और सबके लिए, ये सब अपने आप ही आप लोगों का पुण्य है तो मिलता रहेगा, वह और कुछ नहीं। सारे के सारे जीव पाप और पुण्य के द्वारा संचालित है। यह भारतीय संस्कृति को एक प्रकार से ठुकराना है। कहां का ज्ञान आ गया पता नहीं पड़ता। हमें तो ऐसा लगता है कि भारत के ऊपर 250 वर्ष से जो सत्ता चली उसके कारण ऐसा हो रहा है। क्या किसके लिए हो रहा है? गांधी जी ने यह कहा था कि ये ध्यान रखो, जो पूर्व में था उसको ज्यों का त्यों लाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें बहुत सारी बातें ऐसे लिखी, आज गांधी जी के नाम लेकर के तो सब वोट तो बटोर रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन वोट बटोर नहीं रहे महाराज, जितने वोट है उससे भी ज्यादा संख्या में नोट बांटते हैं। विश्व बैंक एक ऐसा खुला बताते हैं, वहां से नोट लाते हैं कर्ज करके और यहां पर अंधाधुंध बांटा जाता है केवल सत्ता की भूख के लिए। यह शासन की भूख, आत्मशासन से विमुखता को सुनने में समझ में अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोग सामने आकर के बैठे हैं और आज यहां के क्षेत्र के अपेक्षा से क्षमा दिन है बताते, एक दिन मनाते हैं ये लोग, हां, और हम क्षमा चाहते हैं। इस प्रकार के यदि आप लोग मनाना चाहते हैं तो जो अनर्थ हो रहा उसके लिए एक एक दिन और आप निकाल करके दीजिए। आपस में केवल इस प्रकार गले मिलने से कुछ नहीं होने वाला है। जिनके साथ यह अनर्थ हो रहा है उन अनर्थों को दूर करने के लिए आप प्रयास कर दीजिए। क्यों नहीं हो सकता ये देखना है। संस्कार क्या पड़ेगा इस धरती के ऊपर जहां छात्रावास खोला जाता है, जहां पर विद्यालय खोले जाते हैं, जहां पर विश्वविद्यालय खोले जाते हैं, जहां पर जो कुछ भी अच्छे कार्य किए जाते हैं उस क्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है, भारत को पवित्र भूमि घोषित की गई है। ऐसी स्थिति में यहां पर इतने बड़े बड़े कत्लखाने जो एक साथ किसी शुगर फैक्ट्री में गन्ना डाला जाता है और इधर से शुगर जो है बोरी से भर करके निकाला जाता है, उस प्रकार इधर जीवित प्रणियों को डाला जाता है 10-10 हजार 20-20 हजार और इधर से पैकिंग होकर के मांस निकल जाता है। क्या आप विकास कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। विकासशील राष्ट्र हमें विकसित होना नहीं चाहिए। इस प्रकार यदि विकास हो जाएगा हमारा विनाश हो जाएगा। संस्कार बच्चों के ऊपर कैसे पड़ेंगे, इनके संस्कार कैसे आगे बढ़ेंगे, सात्विक ज्ञान का इन लोगों के बीच में कैसा उदय होगा। सम्यक दर्शन बहुत दूर की है बंधुओं बात, कि आज सामने जीव को जीव की पहचान नहीं कर रहा। ध्यान रखो सात तत्व हैं और सर्वप्रथम जीव तत्व रखा है, जीव को मुक्ति मिलती है ये निश्चित बात है, जिसके द्वारा पाप का अर्जन हो रहा है और पुण्य तो सारा समाप्त सफाया हो जा रहा है। और आप कहां सात तत्व को पढ़ोगे। जीव तत्व के ऊपर जो अनुकंपा नहीं कर सकेगा वह व्यक्ति सम्यक दर्शन के सामने क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। आचार्य कुंद देव ने अष्टपावड़ में लिखा है सम्यक दर्शन की बाहरी पहचान क्या है, भीतर के माध्यम से वह भाव आना चाहिए। क्या आ जाता है, अनुकंपा। जो इस प्रकार के जीव रात दिन कट रहे हैं उनके प्रति हमारे भीतर यदि अनुकंपा भाव भी नहीं आता, सम्यक दर्शन एक केवल प्रदर्शन की बात है, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर क्या करें महाराज, अभी आप पूछ रहे हैं फिर क्या करें, फिर हम क्या कहें। अब सोचो विचार करो, कोई किसी के पास हिम्मत नहीं, कोई किसी के पास कट्टरता नहीं, कोई किसी के पास निष्ठा नहीं, कोई किसी के पास अहिंसा के सामने समर्पित होने की भावना नहीं है। अहिंसा उसी का नाम, मैं मर जाऊंगा तो धर्म कैसे करूंगे, गलत, इसी का नाम है आत्मसमर्पण कर लिए। अहिंसा देवता है हमारा, उस अहिंसा देवता की यदि मान लो उपहास हो रहा है उसके सामने हम अपने आप को भी विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि धर्म के लिए अकलंक जैसे, धर्म के लिए और भी कई ऐसे व्यक्तित्व जो समर्पित होने के लिए तैयार होते हैं, क्या उनका धर्म में जीवन नहीं रहा। कि चूहा बन करके 100 वर्ष जीने के अपेक्षा से स्वाभिमान पूर्वक एक जीवन 3 दिन का भी जीना बहुत अच्छा है, नहीं तो इससे कोई मूल्य नहीं होगा। केवल आप शब्दों के संस्कार डालना चाहते हैं तो बहुत है शब्दों के संस्कार, अब कुछ करके दिखाना है। और वह करने का प्रारंभ यही होता है कि सर्वप्रथम जीव मात्र के प्रति आप अपने आप को गले लगाने का भाव पैदा कर दीजिए। एक दिन यह भी क्षमावनी बना करके आप देख लीजिए इसका कितना लाभ होता है। जैनियों के यहाँ कुछ कार्यक्रम तो होते हैं, कुछ कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं जो केवल रूढ़िवाद के पूर्ण समर्थन कहें तो कोई अन्योक्ति नहीं है। इतना सारा का सारा खर्च किया जाता है लेकिन जिधर हमें वितरण करना अपेक्षित है, यदि एक साथ 50,000 की जनता एकत्रित होकर के कुछ कार्य ऐसे कर दें एक घंटे में तहलका मच सकता। ये कार्य होना चाहिए तो होना चाहिए, ऐसा होता था। जैनी उनके ऐसे धाक थे, इतिहास को पढ़ने से ऐसा लगता कि पर्व के दिनों में अपने आप ही छुट्टी मिल जाती थी और शाम को कोई भी जो कोई कर्मचारी है काम करता तो उसके लिए अंतों के लिए 1 घंटा पहले ही छोड़ दिया जाता था। ये सारे सरे हम इतिहास के प्रश्नों पर पढ़ रहे हैं लेकिन आज वे जैन नहीं, रात में हमें चल सकता है, क्या क्या चल सकता है और क्या जो है सब कुछ चल सकता है। जब वो ही सामने कहने लगे तो इसलिए आमतौर से यही कानून बन गया कि भैया 10 बजे ही मिलेगा। सब कुछ प्राचीनता नष्ट होती चली जाती है, संस्कार के नाम से कुछ भी नहीं डाला जा रहा। सच्चे देव गुरु शास्त्र की पूजन करने का अर्थ भी यही है। हम कहते चले जा रहे हैं, प्रकाशन करते चले जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रकाश नहीं मिल रहा। प्रकाशन का अर्थ क्या होता है? एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, इससे 50 ग्रंथों का हमने प्रकाशन किया, बहुत अच्छा किया। महाराज क्या किया? प्रकाश ना, प्रकाशन का अर्थ क्या? प्रकाश ना। इन संख्या बढ़ाने से कुछ प्रकाश मिलता हो? नहीं। एक उदाहरण तो ऐसे स्थापित कर दिया जाए जो जैनाचार्यों के द्वारा, ऐसे ऐसे उदाहरण पुराण ग्रंथों में मिलते हैं, एक व्यक्ति भी आज तैयार नहीं होता। इसलिए आज तो हमारा आप लोगों से कहना, कल भी कहा था लेकिन कल थोड़े से विशेष नहीं कह पाया, उसका कारण क्या है आप लोग जानते हैं। हाँ, लेकिन आज चूंकि रविवार था, हमने सोचना प्रारंभ कर दिया कि कल रविवार के दिन क्षमावनी भी है और बाद में भी क्षमा मांग लेंगे और पहले भी क्षमा मांग लेंगे और बीच में जो कुछ कहना हो तो कह देंगे अवश्य। इतना तो मुझे विश्वास है आप लोग क्षमावनी बनाने के आदि तो हैं। महाराज एक वर्ष में एक दिन मनाते हैं, ये क्या कम है क्या? हाँ, इसलिए तो हम कह रहे हैं, इसलिए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को कैसा ही स्थान है जिस स्थान पर बैठ करके आप आत्मा की बात कर रहे हैं, प्रवचन एकता होकर के सुन रहे हैं। और आज देख रहा हूं कोई भी हाथ में पंखा नहीं है, जो पंखा के नीचे बैठने वालों की यह स्थिति है, गर्मी पड़ रहे हैं कि इस क्षेत्र का प्रभाव माना जाता है, यही क्षेत्र का प्रभाव माना जाता कि हम ऐसे क्षेत्र का निर्माण करें पूरा भारतवर्षी एक क्षेत्र माना जाता है। ध्यान रखो, जहां पर ऐसे पुराण पुरुष हुए हैं, जहां पर जिन्होंने तपस्या की है, वहां पर इस प्रकार के कत्ल खाने खोलना, वह वर्षों तक संस्कार रहेगा तो क्या होगा? आज सुनने में सुनकर के ऐसा लग रहा है ऐसे बड़े बड़े कत्ल खाने वहां के संस्कार, इसीलिए चारों तरफ हिंसा की बात पनपती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। किसी को हिंसा से कोई संवेदना प्राप्त नहीं हो रही है, इतने व्यक्ति मर गए, काट ही रहे हैं, जीवित अवस्था में काट रहे हैं। अभी भी दोबारा मैंने सुना, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, यह आप सुन करके अवश्य सुनेंगे। यह राजस्थान की बात है, बांसवाड़ा जिले की बात है। वहां पर उसमें एक ग्राम है जिसको घाटोल बोलते हैं, उस घाटोल के पास एक उदपुरा है, छोटा सा ग्राम है, ये 12-13 किलोमीटर पर होगा। वहां पर लाइन से लाइन जो ट्रक जा रहे थे और कुछ लोगों ने उनको पकड़वाया, पकड़ने के उपरांत देखा उसमें क्या है, उसमें एक एक में 20-20, 25-25 गाय। आप सोचने की बात है, 8 से ज्यादा डाल नहीं सकते, और 3-3 ट्रक के एक एक ट्रक में है, और वो सारे सारे गर्भवती गाय हैं। जो इन्हें पकड़ लिया गया है, तुम वह सब छोड़ छाड़ करके भाग गए, अभी तक उसका कोई निस्तारण नहीं। लेकिन वह 5-6 ट्रक में से कम भी 45-50 तक संख्या चली गई है, तो 3-4 दिन 4-5 दिन के भीतर भीतर वो सारे सारे बच्चों को जन्म दिए। आज उन बछड़ों को देख करके ऐसा लगता है ये सारे के सारे सीधे ही गर्भवती को ले जा करके कत्ल खाने में गर्भ फाड़ करके उनके जो बछड़ों के चर्म को जिनका वरद हस्त हमारे ऊपर रहता है उनको हम वचनों के माध्यम से बांध नहीं सकते, उनके हम गुणानुवाद कर नहीं सकते। गुणानुवाद के लिए भी ज्ञान की, प्रतिभा की और बहुत चीजों की आवश्यकता होती है, यह निश्चित है। फिर भी माम बाल माला पैतीद मिथम, ये पद्म प्रभु भगवान की स्तुति के अंतिम एक चरण है। ये आलापेति इत्थम माम बालकम, मुझे यह इस बालक के समान जो मैं हूं, इसके लिए भगवान की भक्ति ही मुझे प्रेरित करती है। इसमें मेरी कोई प्रतिभा का प्रयोग नहीं है। जैसे एक छात्र ने कहा कि ख्याल नहीं आया इसलिए अभी तक आत्मा खाल में है, पहले सुनने में मुझे नहीं आया, फिर बाद में घूम करके इधर जब हवा आई तो मुझे भी ख्याल आ गया कि मैं भी खाल में हूं। कितनी अच्छी बात है ये, मैं ही नहीं बोलने वाला भी। और ये ध्यान रखे, ये ख्याल रहे, भगवान भी उससे नहीं बचा है जो अरहंत परवेष्टि माना जाता है, वो भी अभी खाल में है। ये बात अलग है, वो खाल भले ही परम औदारिक के रूप में है, पॉलिश्ड और मालिश्ड हो गया है, लेकिन है तो अभी खाल ही। ये ख्याल रहे कि अरहत परमिष्टि भी जब खाल में है तो हम लोगों की क्या हाल है देखना चाहिए। अभी वृद्ध होते हुए भी हमारा कर्तव्य क्या है, फिर भी मैं कैसा हूं देखना चाहता है, किंतु इस दर्पण में देखो जहां पर बाहुबली भगवान खड़े हैं, उसमें ख्याल आ जाएगा कि मैं अभी भी खाल में हूं। ये खाल का संबंध पृथक कृते चरण मणिरोम कूपा कुतो ही तिष्ठन्त शरीर मध्य, यह तीन बार द्वात्रिंशत का जो सामाय करने वाले हैं प्राय करके पढ़ते हैं, मैं भी इसका वाचन करता हूं बार बार। इस कारिका के बार आने के उपरांत मैं इसको दोहराने की चेष्टा करता हूं, और साथ जो पढ़ने वाले होते हैं तो आगे के श्लोक पढ़ते हैं, तो मैं ये सोचता हूं इन लोगों को अभी ख्याल नहीं है कि हम खाल में। पृथक कृते चरमणिरोम कूपा कुतो तिष्ठन्त शरीर मध्य कहा जा रहा है। जब रोम कूपों को हम पृथक कर देंगे तो वह पृथक नहीं माना जाता है। जब हम चरम को ही पृथक कर देंगे तो वहां पर बाल नहीं रह पाएंगे, रोम रह नहीं पाएंगे, लेकिन यह ध्यान रखो फिर भी वो रोम चरम में रहते हैं, कुछ उखड़ जाते हैं और कुछ चमड़ी सहित जो उखड़ जाते हैं उनकी ओर भी दृष्टि रखना चाहिए। यह भी ख्याल में आना चाहिए, क्योंकि बाल की खाल मत निकालो ऐसा भी कहा गया। बाल की खाल मत निकालो, इसका अर्थ यह है कि खाल में बाल है क्या बाल में खाल है, यही हमें ख्याल करना है अभी। क्योंकि यह उक्ति इसलिए आई है कि जब हम बारीकी के साथ संशोधित करते हैं, छानबीन करते हैं, तो बहुत कुछ उसमें मसाला और मिलता है जो पराया है। अर्थात परमेष्टि अभी खाल में है, यह एक वही है कि जो बाल की खाल की युक्ति को चरितार्थ कर देती है। इसलिए घोषणा जैनाचार्यों ने की है कि जो अरहत परमेष्टि हैं, वह परमेष्टि भले ही हो लेकिन वस्तुतः वह भगवान नहीं है किंतु वह मुनि महाराज हैं। ये ध्यान रखो, आज का छात्र भले ही प्रथम कक्षा में हो लेकिन वो है 13वीं और 14वीं कक्षा के स्नातक भले ही मने जाएंगे, लेकिन है वो भी काल में ख्याल आ गया, बहुत कठिन है। हम उन्हें भगवान कहते हैं, नीचे की बात ही अलग है। आमूल चूल परिग्रह में लगे हुए व्यक्ति भगवान से भी ऊपर उठ करके ये ख्याल ही नहीं करते वो, और वो चर्म के अंदर भगवान उनको दिख रहे हैं। श्रद्धा की बात अलग है और महसूस करना अलग है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार हम यदि गुणानुवाद करना चाहें तो गुणानुवाद कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी प्रतिभा है ही कहां। हम आस्था के माध्यम से कुछ कह सकते हैं, और उस कहने के पीछे भी भगवान की स्तुति नहीं, भगवान टूटे फूटे शब्द हैं, लेकिन उसके पीछे मेरी जो टूटी हुई नैया पार हो जाए जहां पर आप खड़े हैं, हमें कोई प्रयोजन नहीं है। यह भारतीय संस्कृति है, आदर्श हमेशा हमेशा सामने बना रहे, और वही बात मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं कि संस्कारी ऐसे जिनसे हमें कुछ मिला है, जिनसे हमें दिशा बोध मिला है, जिनसे हमें जीवन मिला है, जिनसे हमारा धार्मिक संस्कारों का जीवन प्रारंभ हुआ है, उनके बारे में हमारा क्या कहना होता है, नहीं क्या करना होता है, यह हमें देखना आवश्यक है। आज का युग कहने को महत्व देता है, लेकिन भारतीय संस्कृति कहते कहना नहीं, किंतु उनके प्रति क्या करना है ये आवश्यक है। हम अपने आचार्यों के प्रति, हम अपने जो साधुओं के प्रति, हम अपने अतीत में जो परिश्रम करके गए हैं उनके प्रति क्या कर रहे हैं ये देखने की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं यह स्पीच की बात होती है, यह सुनने की बात होती है। सुनने एक लकीर में पर्याप्त है, करने के लिए हमें बहुत लंबा छोड़ा पड़ा। वीतरागता के ऊपर श्रद्धान करना ये एक दो शब्द हो गए, लेकिन वीतरागता क्या है ये पहचान करके उनके भक्ति में लीन होना बहुत कठिन होता। कठिन उस व्यक्ति के लिए हो जाता जिस व्यक्ति ने कुछ सुनने के उपरांत विशेष कार्य किए। क्या किए? अभी एक छात्र ने कहा कि मूर्तियां बहुत सारी बन जाती हैं, लेकिन मूर्तियां पूज्य नहीं बन पाती हैं। ये ध्यान रखो, जब तक सूर्य मंत्र नहीं दिया जाता है तब तक वह मूर्ति पूज्य नहीं मानी जाती है। और सूर्य मंत्र का अर्थ ऐसा होता है कि प्रतिष्ठान जिसको बोलना चाहिए, पूरी पूरी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो प्राणों को प्रतिष्ठित करने के लिए उसके योग्य भावों का वहां पर आरोपण करना अनिवार्य होता है। इसलिए मूर्तियां कई बन जाती हैं, और इस कान से हवा निकल जाती है वो मूर्तियां नहीं मानी जाती हैं, किंतु जो भाव हम डालते हैं भीतर हृदय तक वह पहुंच जाता है, तलस्पर्शी जिसको बोलना चाहिए, तब कहीं जा करके वह श्रद्धान पैदा करने में सक्षम हुआ करता है। प्रतिष्ठा केवल मात्र मूर्तियों की ऊपर ऊपर नहीं, पांच दिन में नहीं हुआ करती, और वह प्रतिष्ठा होती ही चली जाती है, और जैसी जैसी होती चली जाती है उसमें से वीतरागता प्राप्त हो जाती है। रागियों के माध्यम से प्रतिष्ठा यदि होती है तो राग का ही प्रदर्शन करता चला जाएगा, हमेशा हमेशा वीतरागता का आलंबन अनिवार्य है। जिनके माध्यम से हमें दिशा बोध मिला है, जिनके माध्यम से हमारे जीवन की शुरुआत हो गई है, उनके प्रति हमें क्या करना है उसके बारे में मैं आज रविवार प्रवचन में कुछ कहना चाहता हूं। और आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत आकुलता के साथ आप आए हैं, बैठे भी हैं, क्योंकि आपको कहीं और जाना है। ये तो हमें ख्याल रखना होगा कि हम तो आ ही रहे हैं और जा ही रहे हैं। आना जाना जहां पर रहता है वहां पर कोई आना नहीं होता और न ही जाना होता, इसका नाम भटकना होता है। क्योंकि आना उसी को बोलते हैं जो पुनः जाना ना पड़े। आज जो है बुकिंग होता है आने से पूर्व में जाने का, आकुलता का जमाना है। और उसी में हम भी बैठे हैं। हमारे निमित्त से यदि आकुलता हो जाए तो आज क्षमा के दिन जैसे कह रहे थे हम पहले से क्षमा मांग दे, कहीं आप चले जाएं तो फिर बाद में मैं मांग नहीं सकूंगा। मैं वहां से प्रारंभ कर रहा हूं, कुछ करना है मुझे, और वह एक व्यक्तित्व बहुत भावना के साथ, बहुत भक्ति के साथ जिनसे हमें जीवन मिला है उसके बारे में अपना कुछ करना चाहता है और इससे उसको बहुत प्रसन्नता है। मुझे इस जीवन में कुछ करने के लिए मिल रहा है यह सौभाग्य है, मुझे कहने के लिए मिल रहा है यह सौभाग्य नहीं है। कई लोग जो है कहने के लिए माइक की मांग करते हैं, हम चाहते हैं भैया मेरे सामने माइक ला करके रख देते तो मैं क्या करूं, कुछ कहना तो पड़ेगा। मैं इसमें कहता नहीं, यह मेरा कर्तव्य कह करके यह करना मैं प्रारंभ करता हूं। मैं बोल नहीं रहा हूं, बोलने का यह कर्तव्य समझ करके मैं कह रहा हूं, लेकिन कह नहीं रहा हूं। हमें क्या करना है ये इसके माध्यम से बताना चाह रहा हूं। हमें कुछ करना है, क्या करना है, अपनी क्षमता के अनुसार करना। जिनका उपकार हमारे सिर पर है उनके अनुसार हमें कुछ करना है। ये नहीं है कि हमारे ऊपर जैसे उन्होंने उपकार किया उसी प्रकार हम दूसरे के ऊपर उपकार के कह करके, नहीं, हमें करके दूसरे को इस ओर आकृष्ट करना। मैं दूसरे के ऊपर उपकार करूं यह अच्छा नहीं है, मैं दूसरे के उपकार को दूर करूं यह भी अच्छा नहीं, कि मैं जैसे चाहता हूं उसी के अनुसार उसके करूं तो मेरे जैसे अनाड़ी उसको भी होना पड़ेगा, इसलिए मैं दूसरे को अनाड़ी देखना नहीं चाहता। इस कर्तव्य के माध्यम से वह यदि नहीं चल रहा तो चलना सीख जाए। बच्चे जब आप लोगों के यहां जन्म लेते हैं आप क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा जल्दी जल्दी बोलने लग जाए, ये करने लग जाए, नहीं, ये क्रम नहीं है। मेरा बच्चा चलने लग जाए, मेरा बच्चा चलने लग जाए, कैसी भी चले, वह गिरता हुआ भी चले कि नहीं, चलने लग जाए ताकि वह कुछ बच जाए, नहीं तो स्थावर बन करके बैठ जाएगा तो वो कौन उसको खिलाएगा। जैसे पेड़ पौधे हैं उनको कौन खिलाए, वह स्वयं ही वो भी चलते हैं, कैसे चलते हैं, उनकी जड़ें चलती हैं नीचे की ओर, तभी वो पनप पाते हैं, तभी वो आसमान को छूने लग जाते हैं और राशन के माध्यम से जीवन को व्यतीत करना। ये निश्चित है कि वह चलाना चाहता है, चलना चाहता है, तो माता पिताओं को बहुत खुशी की बात होती है। तो वह चलने लगा और यह सोचता है कि अब चल करके कुछ मैं उपकार तो नहीं किंतु ऋण को थोड़ा सा कम कर सकूं। और वह ऋण करने कम करने का तरीका एकमात्र यह है कि चल करके ही किया जा सकता। और माता पिताओं को वह अपने कंधों के ऊपर ले जाना प्रारंभ करता है। एक कावड़ी बनाई है, कावड़ी आप जानते हैं, नल के पानी पीने वालों को कावड़ी का कोई बोध नहीं होता है? नल का पानी पीने वाला कभी कावड़ी का बोध नहीं होता, जब दूर पानी रहता है तब कावड़ी काम में आता है, और सेठ साहूकारों को तो कावड़ी क्या है पता ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं। लेकिन कावड़ी वह है, दोनों तरफ से दो घड़े रहते हैं और भय रहते हैं, और बीच में एक डंडा रहता है, उस डंडे के बीचों बीच में कंधा लगाया जाता है, बैलेंस्ड करने के उपरांत उसके पैर आगे बढ़ने लग जाते हैं और वह पानी लेकर के आ जाता है। जहां तक स्मरण है मुझे कर्मकांड ग्रंथ में इस जीव को ये कावड़ी लेकर के संसारी प्राणी आ रहा है आज तक, और इसके माध्यम से ही आगे की यात्रा भी तय करना चाहता है। भार है वो, तो वह भार होते हुए भी चूंकि पानी है इसलिए वह भारमय नहीं है, प्राण बचाने के लिए वह जल व पानी आवश्यक होता है, और उसने एक तरफ मां को और एक तरफ पिता को रख दिया है, जिनके आंखें चली गई हैं वृद्धावस्था के कारण या और किसी कारण चली गई हैं, लेकिन उनका एक भाव था कि किसी भी प्रकार से अंत अवस्था में हमारे लिए यात्रा हो जाए। ये देखो बहुत सोचने की बात है, आंखें नहीं और यात्रा क्या मतलब होता है, आंखें नहीं और यात्रा क्या मतलब होता, और जिनके पास आंखें नहीं उनको यात्रा करा करके वो क्या श्रेय पाएगा, गलत बात है। यात्रा करना, जिस क्षेत्र में हम चले जाएंगे अपने आप ही भीतरी जो साधना के माध्यम से वहां पर संस्कार पड़े हैं, वहां पर जाने के उपरांत हमारी भावों में उज्ज्वलता हो जाएगी। भावों की उज्ज्वलता के लिए यात्रा की जाती है, आंखों से यात्रा नहीं की जाती है। एक औपचारिकता है, जिन आंखों के द्वारा विषय और कषायों के चित्रों को हम देखते हैं, जो उन्हीं आंखों के द्वारा यह वीतरागता नहीं दिखते, किंतु वीतरागता का स्पर्शन और वीतरागता का सिद्धांत जो होता है वह भीतरी आंखों के द्वारा, और भीतरी आंख कभी फूटती नहीं है। ध्यान रखो, जिसके संस्कार पड़े हैं भीतरी आंखों के द्वारा भी, जिस किसी भी क्षेत्र में जाकर के वह अपने जीवन को और पवित्र बना देता है। बेटा कि हमारी वृद्धावस्था है और अब हमें यहां से रवाना होना है, इसलिए एक बार यात्रा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं होगी, अवश्य यात्रा। मेरे जीवन की यात्रा आप लोगों के माध्यम से प्रारंभ हो गई है, बहुत अच्छे। इतना बड़ा उपकार आपका हमारे ऊपर है, मैं इतना कर दूं, इसमें क्या प्रार्थना करने की क्या बात है। आप इतने विनय अनुनय के साथ क्यों कह रहे हैं, ये तो आपका अधिकार है। माता पिता कहते हैं, बेटा किसी के ऊपर अधिकार चलाना मानव का कर्तव्य नहीं होता, पालन करना तो ठीक है यह कर्तव्य होता है, लेकिन अधिकार कराना यह ठीक नहीं होता। महावीर भगवान का शासन, महावीर भगवान नहीं कहते हैं ये मेरा शासन। मुझे याद है कि महावीर भगवान के शासन महावीर भगवान ने नहीं दिया, किंतु महावीर भगवान का तो आत्मानुशासन था, किंतु यह संसारी प्राणी उस रहस्य को नहीं समझ पा रहा, अभी भी नहीं समझ पा रहा। यह दूसरे को शासित करना चाहता, जो व्यक्ति दूसरे को शासित करना चाहता वह दूसरे को वह शोषित करना चाहता, और उसके माध्यम से वह कर्तृत्व भाव के कारण अनेक प्रकार के संसार के भव भव में वह भटकता चला जाएगा। यह शासन ऐसा शासन है जो आत्मानुशासन है। बेटा ऐसा न कहे, यह हमारा अधिकार नहीं, किंतु कर्तव्य यदि है तो कर ले। देखो कर्तव्य यदि है तो कर ले, जो अंत में भी जाते जाते भी उनके मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, अधिकार नहीं। यदि कुछ कर्तव्य करता है तो हमें इसलिए संतुष्टि होगी कि कर्तव्य के करने से तेरे भीतर एक और संस्कार की परत पड़ जाएगी, जो परत के कारण बहुत गहराई में पानी यदि हो तो भी फूट करके वो ऊपर आ जाए। ऐसे दृष्टि डालने से ही पाषाण में फूट करके पानी आ जाता है, शस्त्र यदि छतरी डाल देता है तो वहीं पर जो है झरने फूट जाते हैं, लेकिन वह शस्त्र की कमाल नहीं है। ध्यान रखो, वह एकमात्र क्षत्रियता का प्रभाव माना जाता है, उस संस्कार का प्रभाव माना जाता है। सभी लोग प्यासे हैं, पानी मिल जाए, क्यों नहीं मिले, इस प्रकार कहते वह ऊपर आना पड़ता है। निम्न गा होकर के भी पानी ऊर्ज गा बन जाता है, यह एकमात्र उस संस्कार का परिणाम है। और यदि संस्कार बुरे हैं तो पानी फूट रहा है वह भी नीचे और चला जाता है। आज धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ नहीं रहा, पानी उतरता चला जा रहा है, आपको पाताल की ओर जाने के लिए संकेत दे रहा है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव करना चाहिए था, लेकिन पानी के पीछे आप लोगों को 500-600 फीट नीचे जाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसका अर्थ है पानी ऊपर आना नहीं चाह रहा है, क्योंकि पानी का दुरुपयोग हो रहा है। प्राणों के बचाने के लिए तो ठीक है, लेकिन प्राणों के बचाने के स्थान पर वह प्राणों को खाने के लिए यदि होता है तो वह पानी भी नीचे की ओर जाएगा और जा रहा है, और यदि आप कोशिश करेंगे तो ऊपर आने के लिए वह मंजूरी नहीं देगा। तो वह अधिकार की बात नहीं, कर्तव्य की बात है। बेटा करना चाहता तो बहुत अच्छी बात है, और वह तैयार हो जाता है। माता पिताओं को एक काउड़ी में बैठा करके, एक तरफ माँ एक तरफ पिताजी, और बीच में कंधा लगा करके जो कोई भी संस्कार डाले हैं उन संस्कारों के गीत गाता हुआ वह आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ता जा रहा। खुशी की पार नहीं है, बहुत दिनों दिन उसको इतनी खुशी हो रही है कि हाँ आज कुछ कर्तव्य के कदम जीवन में उठ रहे हैं, और जिन्होंने मेरे लिए दिशा बोध दिया उनके लिए कुछ किया जा रहा, और वह कर्तव्य का एकमात्र पालन, अहम भाव नहीं, और वह जा रहा जा रहा जा रहा। अब कुछ ही समय बचा है, वो पार होने वाले हैं, और एक स्थान पर वह कावड़ी उतार देता है और वहां पर जलपान आदि करा देता है। जो कुछ भी भोजन बनाया तो भोजन वगैरह भी कर लेते हैं, और करते ही फिर इसके उपरांत सुन रहे हो क्या? नहीं, हाँ, मैं इसलिए पूछता हूं कि पहले शास्त्र स्वाध्याय कराते समय ऐसा ही पूछा जाता था। हूं कहते जाओ ताकि हम सुन रहे हैं, क्योंकि अभी हमने कहा था ना इस कान से सुन करके इस कान से छोड़ देंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, भीतर उतर रहा है क्या? नहीं, इसलिए हम पूछ रहे हैं। उतर रहा है? अच्छा, नाड़ तो हिलाओ कम से कम। अच्छा, उतरना चाहिए। जो भीतर उतरेगा वही इस संसार रूपी समुद्र से तैरेगा, ध्यान रखना। भीतर उतारो, जितने भीतर उतरेगा उतना ही एक काम आएगा। यदि ग्रास यहीं तक रह जाएगा तो वह ग्रास आपको ही खा जाएगा, ये ध्यान रखो। ग्रास नीचे उतरता है तभी वह पच जाता है, ग्रास यदि ठसके के कारण ब्रह्मरंध्र की ओर चला जाता है तो आप ब्रह्मा तो नहीं बन पाओगे लेकिन ब्रह्म में अवश्य पड़ जाओगे। हाँ, इसलिए पचाने की बात करो, वाचन की बात नहीं। एक एक दाना पच जा, फिर पचना के उपरांत खून अपने आप ही बोलने लग जाएगा। उस खून को हम प्राण बोलते हैं, काय बल बोलते हैं, मन उससे विशेष रूप से संतुष्ट होकर के, अथवा यूं कहना चाहिए मन उसी का संतुष्ट रहता है जो काय बल को अच्छे ढंग से रखता है। तो वह आगे बढ़ने की बात तो नहीं हुई, वहीं कभी ऐसे ऐसे गालियों को वह सुनाना प्रारंभ कर देता है। जीवन हो गया सेवा करते हुए, अंधे बने हुए हैं, अब कब तक इनकी सेवा करना। कंधा सारा सारा टूटने को हो गया, घिस गया है, फूले होने को हो गए, और हमारे जो है थकावट तो मिटती नहीं। सुबह उठते ही कावड़ी लेकर के चलो, शाम तक ले चलो, भूख लगती रहती है, धूप लगती रहती है, अनेक प्रकार के कंकर पत्थर आ जाते हैं, रास्ता तय करना होता है। ये कहाँ का कौन से जन्म का देना पड़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे भी अच्छा ये होता तो तुम मर जाते तो बहुत अच्छे। अब ये सारे सारे बातें किसको सुना रहा है? जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने दिशा बोध दिया, जिन्होंने संस्कार डाले, जिन्होंने छोटे से बड़ा कर दिया, जिन्होंने सर्वस्व निछर किया, उनकी प्रति ये सारे बातें सुनाई जा रही है। लेकिन माता पिता आंखों से भले ही अंधे थे लेकिन कानों से अंधे नहीं थे। उन्होंने सोचा ये शब्द कितने अच्छे हैं। ये इसलिए अच्छे हैं कि हमारी परीक्षा की घड़ी है। संभव है हमने भी इसी प्रकार पूर्व जीवन में किसी की किया होगा और कर्तव्य में कमी रही होगी, इसलिए यह अवश्य मिलता है। जो बोता है वही काटता है, जैसा बोता है वैसा ही काटता है। कर्म कट रहे हैं और इसके माध्यम से, लेकिन यह ठीक हो जाएगा। वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं और मन में खेद खिन्नता नहीं और चेहरों के ऊपर कोई भी मलिनता नहीं और ललाट पर किसी प्रकार की झुर्रियां नहीं। अनुकूलता के साथ तो आपका ललाट और फैल जाता लबरट के समान, और जो ही वह प्रतिकूलता आ जाती है तो 363 झुर्रियां उसके ऊपर आ जाती हैं। 363 क्यों कहता हूं मैं, इसलिए कहता हूं 363 मत ही होते हैं ना, 363 मत होते हैं, वो झुर्रियों के प्रतीक हैं। प्रतिकूलता के कारण यह संसारी प्राणी अपने ललाट को संकुचित कर लेता है और उसमें अपने आप भीतर की भावना बाहर आकर के देखने लग जाती है। कुछ न कुछ तो तन जाता है। वो क्यों तन जाता है यही तो हमें समझना है। वह तना नहीं, माता पिता शांत बैठे रहे, बच्चे ने सुनाया, जब बच्चे ने देखा इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, और पड़ेगा भी कैसे, क्योंकि कुछ कहेंगे मुख से तो मैं यहीं पर पटक करके चले जाऊंगा तो इनका क्या होगा, इसलिए स्वार्थी है, कुछ नहीं कह रहे हैं, ऐसा और कह देता है। संभव है आज तक सोचता था कि कान ही आंख ही चली गई है, अब संभव है कि कान भी इनके चले गए, तो बहरे तो हैं, तो क्या बोलेंगे, हम सुनाते सुनाते थक जाएं, सारी सारी गालियां देना प्रारंभ। तो फिर जब वह थक गया लड़का, कौन है वो लड़के का नाम मालूम है आप लोगों को, क्या है, हाँ आप श्रवण है क्या, श्रवण कर रहे हैं क्या, नहीं हाँ, इसलिए श्रवण कुमार था। श्रवण वह सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, जब वह थक करके रह गया उस समय पिताजी ने कहा, बेटा यहां तक ले आया, पूरा काम हो गया, अब बहुत अच्छी बात है, इतना कर लो कि हमें अब जाना नहीं, किंतु इस नदी के उस पार तक ले चल, बस बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा और तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा, हमने यहां तक कर दिया, बहुत बड़ा उपकार है ये, ऐसा कहा। इतना किया है तो कम से कम नदी पार कर ले। बस नदी पार कराने के लिए वह जैसे ही मूड मानसिकता बना लेता है और पुनः पूर्व की भांति कावड़ी को अपने कंधे पर ले लेता है और वह नदी के पार ला करके रख देता है। अब अपने को छोड़ना ही है, रखा और बस रखा ही, और अपने सिर को उनके चरणों में रख दिया और फूट फूट करके रोना प्रारंभ कर दिया। आप लोगों को यह कथा तो मालूम होगी है, इतने गौर से कैसे आप सुन रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ सुनी है आपने, सुनी है इसलिए वो बहुत अच्छी लग रही है। अब इसमें कमी क्या अपने को देखना है। जब वह रखा कावड़ी और सिर को रख करके चरणों में फूट फूट कर रोने लगा, महा अनर्थ हो गया। आज तक का जितना भी किया था वह सारा का सारा मिट्टी में मिल गया। मेरा जीवन को धिक्कार हो। वह अपने आप को गाली देने लगा, अपने आप जो है घृणा का पात्र होने लगा। निंदामि ग्रहामि अपमानम्, यह प्रतिक्रमण की पंक्तियां हैं। कोई व्यक्ति इन पंक्तियों के बारे में सोचता हो तो उसके मन में